मेरे अभिन्न मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज अपन आस्था और आत्मबल इन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जिसके प्रति हमारी आस्था होती है और उस आस्था से जो हमें आत्मबल प्राप्त होता है वह कौन है, यह कहां से आती है, इसे थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत विस्तार के साथ मैंने इन दोनों विषयों पर बातें की हैं और खासकर इसलिए की है क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है और आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होने लगा है। इसलिए क्योंकि जैसे जैसे तर्कवादी समाज स्थापित होता चला जा रहा है वैसे वैसे स्वाभाविक तौर पर आस्था जैसे शब्द लोगों को झूठे से मालूम पड़ने लगे हैं कि यह सतही है, ये फालतू की चीज है, ये मध्ययुगीन विचार है, इस तरह की बात लोग सोचने लगे हैं। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि अभी के जीवन में आपको एक बहुत ही सतही पना दिखाई दे रहा होगा। उनके पास सारी तरह की सुविधाएं हैं, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आंतरिक शांति होनी चाहिए वह नहीं है। जीवन बेहद सरल हो गया है लेकिन जीना उतना ही ज्यादा कठिन हो गया है, होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? इसका जो मुख्य कारण है वो यही जो मैं समझ पाया हूं कि अब उनके मन में धीरे धीरे आस्था के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वह छेड़ पड़ती चली जा रही है, झीनी पड़ती चली जा रही है, कमजोर होती चली जा रही है। इसका एक जो दूसरा वैज्ञानिक पक्ष है जो मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आप सबसे शेयर कर रहा हूं वह यह कि दोस्तों, आपको किसी के प्रति भी आस्था हो, ईश्वर के प्रति है, स्थान के प्रति है, टोने टोटके के प्रति, किसी के प्रति भी आपकी आस्था है। दरअसल मैंने ये पाया है कि घूम फिर कर वह जो आस्था है वह आपकी अपने प्रति ही आस्था में तब्दील हो जाती है, क्योंकि वह आस्था किस रूप में व्यक्त होगी, आपके माध्यम से ही व्यक्त होगी। तो सोच करके देखिए कि अगर मेरी ईश्वर के प्रति कोई आस्था है और मैं बहुत बुरे संकट से घिरा हुआ हूं और मेरी यह आस्था जो ईश्वर के प्रति है मुझे इस संकट से उबार लेती है तो लोग तो मुझे देख रहे हैं, तो लोगों को आश्चर्य होगा कि अरे राम रे, यह व्यक्ति इस संकट से कैसे उबर पाया, इसने तो कमाल ही कर दिया यार, वो लोग सोच रहे हैं। अब आप देखें कि उनके नजर में शक्तिशाली कौन है, उनकी नजर में शक्तिशाली मेरी आस्था नहीं है या वह ईश्वर नहीं है जिसके प्रति मेरी आस्था थी और उसने मुझे उबारा। समाज की आंखों में जो शक्तिशाली व्यक्ति जो सिद्ध हो रहा है वो कौन हो रहा है, वह मैं हो रहा हूं। और सच पूछिए तो यही बात हमें समाज में एक, आप यूं कह लीजिए कि विशेष व्यक्ति के रूप में स्थापित कर देती है और जीवन में भी दूसरों की तुलना में बहुत आगे ले जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत इसका उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए कि आस्था आपके अंदर कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ला देता है, कितनी ज्यादा स्थिरता ला देता है, कितनी ज्यादा संतुलन ला देता है, क्योंकि जैसे ही आप गड़बड़ाने को करते हैं, हड़बड़ाने की स्थिति आती है, अपना संतुलन खो रहे होते हैं, वैसे ही जो आस्था है आपके इस असंतुलन को समाप्त कर देती है, आपके मन को शांत कर देती है और आप सोचने लगते हैं समथिंग विल टर्न अप, नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा और जो होगा वह बेहतर ही होगा। दोस्तों, क्या आपने एक दार्शनिक हुए हैं सनाका, उनका नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे तो डेफिनेटली आपने सुना होगा। ये रोम के बहुत बड़े दार्शनिक थे सनाका, और नीरो का नाम शायद आपने जरूर सुना हो क्योंकि कहावतों में भी यही आता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, वह रोम का सम्राट था। और दोनों में संबंध यह था कि जो सनाका थे वो इस नीरो के गुरु थे, और यहां तक कहा जाता है कि नीरो को सम्राट बनाने में सनाका का बहुत बड़ा रोल भी था। सनाका और उनकी मां ने मिलकर के ही एक तरीके से नीरो को रोम का सम्राट बनाया था। क्लियर हो गया नीरो और सनाका का संबंध? अब हुआ ये कि बाद में धीरे धीरे नीरो को शक होने लगा कि जो सनाका है यानी कि जो उनके गुरु हैं उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अब देखिए, राजशाही में तो ये सब चीजें होती ही हैं, सिखाने पढ़ाने वाले लोग होते ही हैं, जबकि सनाका को इन सबसे क्या मतलब था। लेकिन चलिए, जब नीरो को यह विश्वास हो गया कि नहीं सनाका उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो फिर उन्होंने सजा सुनाई। और सजा क्या सुनाई मालूम है? कि राज दरबार में इस सनाका की नस काटी जाएगी, हाथ की नस काटी जाएगी और एक एक बूंद रक्त उसकी नसों से बहेगा और उससे धीरे धीरे उसकी मौत होगी। कल्पना करके देखिए, वो अपने गुरु को यह सजा दे रहे हैं। ठीक है, यह सजा सुना दी गई तो सनाका ने सम्राट से कहा कि मुझे घर जाने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं घर वालों से अंतिम बार मिल लूं और उनसे विदा ले लूं। मना कर दिया गया कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। इसके बाद फिर सनाका ने कहा कि ठीक है, चलिए, मुझे आप इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं तो मुझे फिलॉसफी की कुछ किताबें मंगवा दीजिए कि इधर रक्त की बूंदें गिरती रहेंगी, मैं किताबें पढ़ता रहूंगा और फिर अंत में तो मेरी मौत होनी ही होनी है। उसकी यह इच्छा भी ठुकरा दी गई। सोचिए फिर क्या हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि अपने शिष्यों को मुझे बुलाने दीजिए, मैं अपने शिष्यों से दर्शन शास्त्र पर चर्चा करूंगा और इस तरह से अंतिम सांस लूंगा। और उन्होंने फिर अपने शिष्यों से कहा कि इससे खूबसूरत समय और भला क्या हो सकता है कि मैं मृत्यु के अंतिम घड़ियां गिन रहा हूं और उन घड़ियों में मैं फिलॉसफी पर बात कर रहा हूं, इससे अच्छा अवसर भला और क्या हो सकता है। और उन्होंने अपना जीवन इस तरीके से समाप्त किया। अब आप बस सोच करके देखिए कि सनाका में ये जो ताकत आई, जो इतना बड़ा संतुलन आया, वह कहां से आया। तो आपको लगेगा कि आस्था से बात सधी होगी। आस्था किसके प्रति थी, चाहे वो उनके अपने दर्शन के प्रति हो, अपने विचारों के प्रति हो, अपने प्रति हो, अपनी आत्मा के प्रति हो, जिसके प्रति भी हो। और यही है दोस्तों आस्था की सच्ची ताकत। तो आज बस इतना ही, मुझे इजाजत दें। नमस्कार।